नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारू अध्याय प्रथम, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, श्लोक संख्या 13 का तात्पर्य नहीं है तो 13 के बाद 14 श्लोक करेंगे। श्लोक संख्या 13 मैं पढ़ रहा हूं। ततः शंखाश्च भीर्यश्च पणवानक गोमुखां सैवाभ्यहण्यन्त ससंदस्तुम लोभवन्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। श्लोक संख्या 14 सब लोग मेरे पीछे बोलिए। ततः श्वेतैर हयैर युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदमतु। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति चन्दने स्थितं माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदमतु। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति चन्दने स्थितं माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदमतु। बोलिए, शब्दार्थ बोलिए। ततः तत्पश्चात, श्वेत है, श्वेत हय है, घोड़ों से युक्ति युक्त महती विशाल चंदनी रथ में स्थित आसीन माधव कृष्ण लक्ष्मीपति ने पांडव अर्जुन ने पांडु पुत्र ने च तथा एवं निश्चय ही दिव्यों दिव्य शंख शंख प्रदत्मतु बजाए। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, सब लोग ऊंचे स्वर में बोलिए। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहां धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगन ललिता श्री विशाखान्वितम हे कृष्ण करुणाम सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा सुनवादी पाश्चात देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। हाँ, संजय कह रहे हैं तथा स्वेतैर हायर युक्ते, उसके बाद, तथा का मतलब उसके बाद, किसके बाद? इसके पहले संजय ने बताया था कि दुर्योधन की सेना के शंख नगाड़े बिगुल तुरही सब बाजे बजे और तुमुल नाद हुआ। उसके बाद क्या हुआ? श्वेत घोड़ों द्वारा जुता हुआ जो विशाल रथ है, उसमें आसीन कौन है? श्री कृष्ण और अर्जुन है। उन्होंने दिव्य शंखे बजाए। तात्पर्य में हम सुनेंगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद के भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। हाँ, ठीक है ना। बारहवें श्लोक में कहा गया था कि भीष्म जी ने शंख बजाया लेकिन ये नहीं कहा गया कि वो दिव्य शंख था। लेकिन कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाए, ये दोनों दिव्य हैं। तो प्रभुपाद जी इस बात को जो है विशेष रूप से महत्व दे रहे हैं कि कृष्ण और अर्जुन के शंख कैसे हैं, दिव्य हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं दिव्य शंखों के नाद से ये सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जेस्तु पांडु पुत्राणाम ये ताम पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं। क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती है। प्रभुपाद जी ने लक्ष्मी की बात क्यों करी आप जानते हैं, इस श्लोक में ऐसी क्या चीज है जिसके कारण से प्रभुपाद जी लक्ष्मी की बात करते हैं कि लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहां भगवान रहते हैं। कौन बताएगा? इस श्लोक में ऐसा कोई शब्द है जिसके कारण प्रभुपाद ने माधव, संजय ने कृष्ण का नाम यहां पर लिया है माधव, कि माधव ने संग बजाया है? तो माधव का मतलब क्या है? मां का मतलब लक्ष्मी और धव का मतलब पति है, तो माधव का मतलब लक्ष्मी के पति है। तो लक्ष्मी है वहां पर जहां भगवान है, क्योंकि तो अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के संघ द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। विजय और श्री, श्री का मतलब लक्ष्मी देवी, मतलब धन की देवी, धन संपत्ति, धनंजय, अर्जुन को धनंजय कहा जाता है। विजय और धन की प्राप्ति अर्जुन को होने वाली है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी वह जाएगा वहां विजय निश्चित है। क्या समझे? तीनों लोकों में ये अर्जुन का जो रथ है, ये तीनों लोकों में कहीं भी जा सकता है, कहीं इसकी गति रुक नहीं सकती। जमीन में, पर्वत में, आकाश में, स्वर्ग में, पाताल में, कहीं भी अर्जुन का रथ जो है रुकता नहीं। समुद्र के अंदर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है अर्जुन का रथ। और अर्जुन के रथ में एक विशेष बात जानते क्या है? 100 घोड़े थे, श्वेत हैर होते, सफेद घोड़े तो इसमें बताए गए, कितने बताएंगे ये नहीं बताएंगे, ये तो नहीं दिखा कि कितने घोड़े हैं। और वैसे तो 4 घोड़े दिखाए जाते हैं चित्र में, लेकिन ना हमने महाभारत में पढ़ा है कि चित्र रथ गंधर्व के द्वारा दिए गए 100 घोड़े थे अर्जुन के रथ में, और ये 100 घोड़े जो है दिव्य थे। इनकी विशेषता ये थी कि अगर कोई घोड़ा मर जाए बीच में तो उसी जगह पर दूसरा घोड़ा आ जाता था, 100 की संख्या में कमी नहीं होती थी। ऐसा जो ना अद्भुत ये अर्जुन का रथ था, है ना। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ, और अब इस श्लोक पर जो मेरा लेख लिखा गया था, जो भगवद दर्शन में छपा था, उसे मैं पढ़ के सुना रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्या समझे? धृतराष्ट्र ने 2 प्रश्न किए हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने 2 प्रश्न किए, क्या? माम का पांडवाश्च किम अकुर्वत, मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, है ना। 2 प्रश्न किए। हम जानते हैं कि भगवद गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने 2 प्रश्न पूछे थे। पहला, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मेरे पुत्रों ने क्या किया, तथा दूसरा, पांडव के पुत्रों ने अर्थात पांडवों ने क्या किया। पहले प्रश्न के उत्तर में संजय ने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से दुर्योधन को ही प्रधान समझकर उसके कार्यकलापों का वर्णन किया। श्लोक संख्या 12 में संजय ने बतलाया कि दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म जी ने सिंह गर्जना करके ऊंचे स्वर में अपना शंख बजाया। इसके पश्चात श्लोक 13 में संजय ने बतलाया कि भीष्म जी की शंख ध्वनि के पश्चात अनेक शंख, भेरिया, नगाड़े, बिगुल, तुरही आदि अनेक बाजे बजे, और इस प्रकार तुमुल शब्द हुआ। इस 13वें श्लोक में भी संजय ने दुर्योधन की ही स्थिति का वर्णन किया है, क्योंकि जो भी बाजे बजाए गए थे वे सब दुर्योधन को हर्षित करने के लिए बजाए गए थे। तो श्लोक संख्या 13 तक धृतराष्ट्र के पहले प्रश्न का उत्तर दिया संजय ने कि मेरे पुत्रों ने क्या किया। तो मेरे पुत्र में, धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे प्रमुख दुर्योधन है, तो दुर्योधन के कार्यकलाप बताएंगे। श्लोक संख्या 13 तक। जिस प्रकार भीष्म जी ने दुर्योधन को हर्षित करने के लिए संघ बजाया था, उसी प्रकार कौरव सेना के सेवकों ने भी भीष्म जी का अनुसरण किया। इस प्रकार संजय ने यहाँ तक धृतराष्ट्र के पुत्रों में से एक प्रधान दुर्योधन के कार्यकलापों का वर्णन किया। अब धृतराष्ट्र का दूसरा प्रश्न था कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडव पुत्रों ने क्या किया। हम जानते हैं कि पांडवों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन है, क्योंकि 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा है पांडवानाम धनंजयः, अर्थात पांडवों में अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए संजय सभी पांडवों के कार्यकलापों का वर्णन ना करके केवल अर्जुन के ही कार्यकलापों का वर्णन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के प्रश्न के अनुसार संजय भी इस श्लोक में अर्जुन का नाम ना लेकर पांडव शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं, है ना? क्या कहा? माधवा पांडवस्य, अर्जुन ने कहा है पांडव का है। धृतराष्ट्र ने पूछा था माम कहा पांडवा से किम करवत, मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया, है ना? तो यहां पर पांडव कहा है, जिसे धृतराष्ट्र को समझ में आए कि उनके ही प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। ये पूरी भगवद गीता जो संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र के प्रश्न से अलग नहीं है। नहीं तो कोई सोचे कि ये भगवद गीता संजय ने क्यों सुनाई, धृतराष्ट्र ने तो पूछी नहीं थी भगवद गीता, है ना? लेकिन संजय जो है पूरी भगवद गीता सुना रहे हैं धृतराष्ट्र के प्रश्न को लेकर के। क्योंकि अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन पांडव है, तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, भगवद गीता सुन रहे हैं। इसलिए भगवद गीता पूरी इसी प्रश्न में आ गई कि अर्जुन ने क्या किया, है ना? अगर अर्जुन भगवद गीता सुन रहे हैं तो फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो भगवद गीता इसलिए धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में आ गई, जबकि धृतराष्ट्र ने पूछी नहीं थी कुछ भी, भगवद गीता के बारे में कुछ नहीं पूछा था, क्योंकि उस समय और कुछ काम हो ही नहीं रहा। अर्जुन अगर श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता तो बाकी सब के सब या तो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर सुनाई दे रहा तो सुन रहे हैं, नहीं तो दिखाई तो दे रहा है। क्या अर्जुन और कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में है, ऐसी जगह पर अर्जुन और कृष्ण खड़े हैं कि सब लोग देख रहे हैं अर्जुन कृष्ण को, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर भगवद गीता कि जो भी चर्चा है पूरा का पूरा उपदेश धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में इसलिए आ गया क्योंकि और कोई कुछ नहीं कर रहा था, तो युद्ध का वर्णन फिर और क्या करते, सब काम बंद हो गए। तो आगे धृतराष्ट्र के प्रश्न के अनुसार संजय भी इस श्लोक में अर्जुन का नाम ना लेकर पांडव शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। श्री कृष्ण का नाम यहां पर माधव होने का अर्थ क्या है, मां का अर्थ है लक्ष्मी तथा धव का अर्थ है पति, इस प्रकार माधव का अर्थ हुआ लक्ष्मीपति। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में यह वर्णन है कि जब लक्ष्मी जी क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न हुई थी, क्या समझे? श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में वर्णन है कि जब लक्ष्मी जी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी उस समय सभी देवता तथा असुर उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार ये निर्णय करना अत्यंत कठिन था कि लक्ष्मी जी को कौन प्राप्त करेगा। उस समय क्षीर सागर के तट पर ही समस्त देवता तथा असुर बैठ गए, क्यों? तथा लक्ष्मी जी को यह अवसर दिया गया कि वे स्वयं अपनी रुचि के अनुसार अपने वर का चयन करें। विवाह की इस विधि को स्वयंवर कहा जाता है। ये लक्ष्मी स्वयंवर की घटना 6वें मन्वंतर में हुई थी, जिसमें लक्ष्मी जी ने समस्त असुरों तथा देवताओं के गुणों पर विचार किया। अब कोई कन्या अगर अपना पति ढूंढ रही है तो बहुत सोचेगी बिचारेगी, है कि नहीं? ऐसे थोड़े कि आंखें बंद करके कुछ किसी को पति बना ले। तो लक्ष्मी जी जो है बहुत रही हैं कि किसको पति बनाऊं, है? तो सब असुरों और देवताओं के गुणों पर विचार किया लक्ष्मी जी ने स्वयंवर। लक्ष्मी जी ने देखा कि बड़े बड़े देवताओं में भी कुछ न कुछ कमी अवश्य है। इस प्रकार सभी देवताओं का निरीक्षण करती हुई जब उन्होंने भगवान को देखा तो उन्होंने विचार किया कि भगवान के पास संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण त्याग है। यद्यपि भगवान के अंदर लक्ष्मी को प्राप्त करने की कोई भी कामना नहीं थी, फिर भी लक्ष्मी जी ने भगवान का वरण किया। लक्ष्मी जी को भगवान के वक्षस्थल में निवास स्थान मिल गया। लक्ष्मी जी ने जब अपने हाथ की वरमाला भगवान के गले में डाली तो समस्त देवताओं ने जय जय ध्वनि की, ऋषियों ने मंगलकारी मंत्रों का उच्चारण किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने गीत गाए तथा देवों ने पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण के विवाह के अवसर पर जिन लोगों ने हर्ष मनाया उन पर लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पड़ने से उन्हें अनेक सद्गुणों की प्राप्ति हुई। हाँ, लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पड़ी किन के ऊपर? जिन्होंने खुशी मनाई। किस बात की? लक्ष्मी नारायण के विवाह की खुशी मनाई। परंतु असुरगण भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होने के कारण लक्ष्मी जी का भगवान के साथ विवाह होने से प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? वे लक्ष्मी का पति बनना चाहते थे असुर लोग, इसलिए उनको तो बड़ी ईर्ष्या हुई कि हमारा तो बड़ा नुकसान हो गया। इसलिए लक्ष्मी जी की असुरों पर कृपा दृष्टि न पड़ने के कारण वे क्या हो गए? निर्बल हो गए, निर्लज हो गए और आलसी हो गए। निर्बल, निर्लज और आलसी हो गए। क्यों? लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि नहीं पड़ी उनके ऊपर। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि यदि लक्ष्मी की नारायण के साथ पूजा तथा सेवा की जाती है तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं तथा लक्ष्मी जी की कृपा से भक्तों को इस भौतिक जगत में भी सभी प्रकार के सुख तथा सुविधाएं प्राप्त होती हैं। परंतु जो लोग आसुरी स्वभाव के हैं वे लक्ष्मी को नारायण से अलग करके लक्ष्मी जी को भोगने के लिए लक्ष्मी जी की अलग से पूजा करते हैं। इस प्रकार की चेष्टाओं से लक्ष्मी जी कभी भी प्रसन्न नहीं होती। श्रील प्रभुपाद ने इस विषय में रावण का उदाहरण दिया। रावण सीता को राम से अलग करके सीता की सेवा करना चाहता था, परंतु इस प्रयास से उसका सर्वनाश हुआ। सीता की सेवा पूजा करना चाहता था राम से अलग करके। इसके विपरीत हनुमान जी सीता को राम के पास लाना चाहते थे। इस प्रयास से उनकी शक्ति, यश, ज्ञान आदि समस्त सद्गुणों में वृद्धि हुई। इस श्लोक में यह बताया गया है कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों ने एक साथ संग बजाए। इससे यह पता चलता है कि अर्जुन तथा श्री कृष्ण में एक दूसरे के प्रति अत्यंत घनिष्ठता थी। श्रीमद् भागवत में जिस नवधा भक्ति का वर्णन है उसमें एक सख्य भक्ति भी है। नौ प्रकार की भक्ति है ना? क्या? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो सख्य भक्ति है। अर्जुन उसी सख्य भक्ति का आचरण करने के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सख्य भक्ति। भगवान भी अर्जुन के सारथी बनकर इस जगत को शिक्षा देते हैं कि कोई भी जीव भगवान के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर सकता है। भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अर्जुन तथा श्री कृष्ण के दिव्य संबंध को समझें। बहुत जरूरी। अगर आप भगवद गीता को समझना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है। क्या? अर्जुन और कृष्ण के दिव्य संबंध को समझना। यदि कोई व्यक्ति गीता का केवल पाठ करे, चाहे वह गीता के शब्दों को ना भी समझ सके, परंतु वह श्री कृष्ण तथा अर्जुन के रूप का स्मरण तथा उनके दिव्य संबंध का स्मरण कर रहा हो तो वह भी गीता पाठ से लाभान्वित होता है। और कुछ भी ना समझो अगर गीता में तो भी। इस बात की पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हुई है। दक्षिण भारत के रंगनाथ मंदिर में एक अशिक्षित ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहा था। अशिक्षित होने के कारण वो शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा था, परंतु वह श्री कृष्ण तथा अर्जुन के रूप का स्मरण कर रहा था तथा ये सोचकर रोमांचित हो रहा था कि भगवान कितने दयालु हैं कि वे अपने भक्त अर्जुन का रथ चला रहे हैं। उसको गीता समझ में नहीं आती, इन गीता पढ़ते हुए वो केवल यही सोच करके रोमांचित हो रहा था। उस ब्राह्मण की इस दिव्य स्थिति को ना समझकर बहुत से लोग उसकी अशुद्ध गीता पाठ को देखकर हंस रहे थे, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। उन्होंने उस ब्राह्मण की ऐसी निष्ठा को देखकर उसे अपने गले से लगाया तथा उससे कहा कि तुम वास्तव में गीता का पाठ कर रहे हो। वो स्वयं कह रहे उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम गीता का पाठ कर रहे हो। 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हम दोनों यानी अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद का अध्ययन करेगा वो मेरी ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा करने का फल प्राप्त करेगा। इसका अर्थ यह है कि यदि हम भगवद गीता में अर्जुन के प्रश्नों तथा श्री कृष्ण के उत्तरों का अध्ययन करें तो श्री कृष्ण को तत्व से जान सकते हैं। इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति गीता के उपदेश को ना भी समझ पाए परंतु वह श्री कृष्ण भगवान है इस बात पर श्रद्धा रखता हो और अर्जुन श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं इस बात को समझता हो, दो बात है, तो वह भी गीता का श्रवण कर पापों से छूट जाता है। श्री कृष्ण के सखा होने के कारण अर्जुन के मन में श्री कृष्ण का संग करने की अत्यंत तीव्र इच्छा रहती थी। खांडव वन का दाह करने के लिए अग्नि देवता उस समय ब्राह्मण के रूप में याचना करने के लिए आए जिस समय श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ थे। जिस समय अग्नि देवता उनसे मिले उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे के साथ अत्यंत घनिष्ठता पूर्वक बातें कर रहे थे। अब पता है अग्नि देवता की क्या परेशानी थी, किसी राजा ने 12 साल तक लगातार अग्नि देवता के नाम से आहुति डाली घी की, और घी की मतलब अनवरत धारा अग्नि में डाली, अग्नि को इतना घी पिलाया, अग्नि देवता को अजीर्ण हो गया। जैसे ज्यादा घी आप खाओगे तो क्या होगा, अजीर्ण हो जाता है, अग्नि देवता को अजीर्ण हो गया। अब अग्नि की लपटें जो है ना ज्यादा तेज नहीं जलती थी, बहुत हल्की हल्की मतलब जैसे मंद अग्नि हो गई, तेज अग्नि नहीं जलती थी। तो अग्नि देवता ने ब्रह्मा जी के पास जाके अपनी समस्या बताई कि मुझे तो अजीर्ण हो गया, अपच हो गया है। जैसे अपच हो जाए तो आप खाना नहीं चाहते हो और बेमन से आप खाते हो, थोड़ा थोड़ा खाते हो, है ना। ऐसी अग्नि देवता की जो लपटें थी ना वो मतलब जलाने की शक्ति कम हो गई थी ना? तो ब्रह्मा जी ने कहा खांडव वन में जो है ना जितनी वृक्ष हैं और पशु पक्षी हैं अगर उनको तुम भोजन करो, उनको जलाओ मतलब खा लोगे तो तुम्हारा अजीर्ण दूर हो जाएगा, तुम्हारी भूख वापस आ जाएगी, है ना। तो अग्नि देवता जब भी जलाएं तो इंद्र जो है ना उसकी रक्षा करते थे उस वन की, तो जल की वर्षा कर दें तो अग्नि देवता जला नहीं पाते थे। तो ये समस्या थी। अब अर्जुन और कृष्ण के पास आए अग्नि देवता की ये मेरी समस्या है। तो उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे के साथ अत्यंत घनिष्ठता पूर्वक बातें कर रहे थे फुर्सत से। वे एक दूसरे को अपने जीवन के अनुभव बता रहे थे, बिल्कुल फुर्सत में बैठे बातें कर रहे हैं। अग्निदेव भी उनकी इतनी घनिष्ठता को देखकर चकित हो गए। अग्निदेव ने सोचा कि जिस कार्य को आज तक कोई भी नहीं कर सका उस कार्य को श्री कृष्ण और अर्जुन मिलकर अवश्य कर देंगे, अच्छा मौका है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने मिलकर खांडव वन को जलाने में अग्निदेव की सहायता की। इसके फलस्वरूप अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को यह दिव्य रथ दिया था जिसमें इस समय श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं। ये दिव्य रथ जिस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन के संग दिव्य है उसी प्रकार उनका यह रथ भी दिव्य है। इस रथ की ध्वजा में बानर का चिन्ह था। बाद में इस बानर के चिन्ह में साक्षात हनुमान जी विराजमान हो गए तथा जिस समय अर्जुन का रथ चलता था उस समय रथ के पहियों की घर घराहट के साथ हनुमान जी की गर्जना भी मिल जाती थी। तथा इस प्रकार अर्जुन के रथ से अत्यंत भयंकर आवाज निकलती थी जो शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण कर देती थी। जैसे रथ चलता था तो पहियों की घरघराहट के साथ हनुमान जी की गर्जना मिल जाती थी, तो बहुत भयानक आवाज होती थी, शत्रुओं के हृदय फट जाते थे अर्जुन के रथ की पहियों की घरघराहट से। और जो ध्वजा थी अर्जुन के रथ की, यदि बड़ी विचित्र थी ध्वजा, जानते कितनी बड़ी ध्वजा थी अर्जुन के रथ की? एक योजन लंबी ध्वजा थी। एक योजन मतलब 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर लंबी ध्वजा थी अर्जुन के रथ की। और वृक्ष से वो फंसती नहीं थी, रुकती नहीं थी, रास्ते में पेड़ पड़ जाएं, जैसे बिजली के खंभे पड़ जाएं, है ना, तो जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है कि नहीं, और काफी दिक्कत होती है। तो अर्जुन का रथ नहीं रुकता था, वो ध्वजा जो 12 किलोमीटर लंबी ध्वजा थी वो रुकती नहीं थी कहीं पर भी। कितनी आश्चर्य की बात थी वो, 12 किलोमीटर, सोचो। श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति असीमित प्रेम होने के बावजूद भी श्री कृष्ण इस प्रेम को और भी अधिक बढ़ाना चाहते थे, इसलिए जिस समय श्री कृष्ण और अर्जुन के पराक्रम से इंद्र देवता पराजित हुए, उस समय इंद्र ने वर्षा की और अर्जुन और कृष्ण क्या कर रहे थे, अग्नि की सहायता कर रहे थे कि जलाओ तुम, तो इंद्र ने क्या किया, वर्षा शुरू कर दी। तो अर्जुन ने क्या किया, अपने बाणों से ऐसा जाल बनाया